हरे कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री धामेश्वर गौरांग महाप्रभु की तो कोला द्वीप नाम की जो जगह है जिस पर हम बैठे हुए हैं ये नवदा भक्ति में पाद सेवन विधि को बताती है। तो पाद सेवन विधि का ये स्थान है नवधा विधि में नवद्वीप में। इसको वराह क्षेत्र भी कहते हैं, कुलिया पहाड़ भी कहते हैं, कुलिया पर्वत भी कहते हैं, और श्री वृंदावन धाम में जो गोवर्धन पर्वत है उससे ये जगह अभिन्न है। दिस इज गोवर्धन हिल ऑफ वृंदावन मैनिफेस्ट इन नवद्वीप धाम। इसके उत्तर दिशा में बहुला वन है जो वृंदावन का एक वन है, और इसके दक्षिण दिशा में रासस्थली है। यहाँ पर भी भगवान ने अपनी रासस्थली प्रकट की है। इस जगह का और भी एक नाम है जिसका नाम है महाप्रयाग या पंचप्रयाग। इसका नाम पंचप्रयाग पंचवेणी महाप्रयाग इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर भागीरथी मंदाकिनी अलकनंदा सरस्वती यमुना भोगवती मानसी गंगा इन नदी का मिलाप होता है। जैसे मैंने बताया आपको 16 नदियों के अलग अलग प्रभावों में बहने से नवद्वीप का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर 5 नदियों का मिलन है, भागीरथी मंदाकिनी अलकनंदा सरस्वती और यमुना, और आगे जाकर भोगवती और मानस गंगा भी यहाँ पर आके मिल जाती है। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी के नेतृत्व में और निर्देश में यहाँ पर ऋषियों ने लाखों यज्ञ किए हैं इस जगह पर। इतनी पवित्र जगह है। और भी शास्त्र में लिखा है कि इस जगह पर जिसकी मृत्यु होती है हवा में भूमि में या जल में सीधे गोलोक में प्रवेश करता है ऐसा व्यक्ति। सत्ययुग में वराह देव का अवतार हुआ था और वराह देव ने अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा था। उसके बाद में इस द्वीप पर वासुदेव नाम के ब्राह्मण ने भगवान की बहुत अच्छी सेवा की, भगवान के विग्रह की। उसके पास वराह देव का विग्रह था, फूल इत्र अगरबत्ती दीपक और चमर, इन सभी वस्तुओं से बड़े प्रेम के साथ उन्होंने वराह देव की पूजा की। तो यथावकाश उसके शुद्ध भक्ति के कारण वराहदेव उसके लिए प्रकट हो गए और वराहदेव के शरीर में बहुत सुंदर सुंदर अलंकार थे। उस सुंदर से अलंकार से सुशोभित रूप में वराहदेव ने वासुदेव को दर्शन दिया। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो लोग बैठे उनका ध्यान नहीं है, सब लोग उधर कहीं देख रहे हैं। ऐसे बैठेंगे तो कथा कैसे सुनेंगे आप लोग? दिस इज नॉट वे टू हियर कथा। और जो लोग पास में थे वो सब दूर चले गए, इसका क्या मतलब होता है? हरे कृष्ण, जितना आपका उत्साह रहेगा उतना मेरा चार्ज रहेगा, ध्यान में रखना। हाँ, तो सुंदर रूप में वराहदेव ने उनको दर्शन दिया और वराहदेव ने कहा कि मैं हिरण्याक्ष को मारने के लिए इसी रूप में इसी धाम में मैंने अवतार लिया था, यहाँ से अवतार लेकर मैं हिरण्याक्ष को मारने के लिए चला गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का जो वराह अवतार है वो इस द्वीप पर हुआ है। फिर वराहदेव भगवान वासुदेव को बोलते हैं कि इस धाम में केवल निवास करने से पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उनको दर्शन करने के बाद भी जितना लाभ नहीं होता है उतना केवल इस धाम में निवास करने से मिलता है। इसका मतलब आपको अभी दिन भर आज निवास मिल रहा है, हा? सारे विश्व के तीर्थों का दर्शन करने का लाभ केवल यहाँ पर आने से आपको प्राप्त होता है। और फिर भगवान ने वरादेव ने वसुदेव को वरदान दिया कि आने वाले कलयुग में, मतलब वो सत्ययुग की बात कर रहे हैं, सत्ययुग की घटना है ये, केवल सत्ययुग की घटना मतलब हिरण्याक्ष को मारने के पहले, तो हिरण्यकशिप को मारने के पहले, हिरण्याक्ष को मारने के बाद की घटना है ये। उसके बाद में भगवान ने हिरण्यकशिप को नरसिंह भगवान लेकर अवतार लेकर मारा है। उसके बाद आया त्रेतायुग, तो भगवान रामचंद्र आए। उसके बाद द्वापर युग, भगवान कृष्ण आए। उसके बाद आने वाले कलयुग में भगवान बता रहे हैं कि मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा, हरिनाम संकीर्तन करूंगा, उसमें आप भी दोबारा अवतार लोगे और मेरे दिव्य संकीर्तन में आप भी भाग लोगे। ऐसे उन्होंने वासुदेव को वरदान दिया। वासुदेव ने यह घटना होने के बाद में पूरा शास्त्र पढ़ा और शास्त्र में अनेक प्रमाण ढूंढ के निकाले, जिसमें यह प्रतीत हुआ था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार लेकर संकीर्तन करने वाले हैं। इस बात का प्रमाण उसने ढूंढ लिया। अभी वो कथा जो है बुद्धिमंत खान की बताऊंगा। कल जब हम परसों गोद्रुम द्वीप में गए थे तो एक स्थान में जा नहीं पाए, उसका नाम था एक मिनट उसका नाम था सुवर्ण विहार। तो वहां पर एक राजा थे, उसका नाम था सुवर्ण सेन। तो वो सुवर्ण सेन राजा बहुत धन दौलत अधिकार शक्ति पावर जमाने में बहुत बिजी था। तो नारद मुनि को बहुत दया आई उसके ऊपर। नारद मुनि उसके पास पहुंचे, उसको उन्होंने उपदेश दिया कि आप जिसको अपना समझते हो सब कुछ मृत्यु के समय आपसे छीनने वाला है, आपका परिवार धन दौलत अधिकार पद ऐश्वर्य जो भी आप अपना समझते हो उसको संचय करने में लगे हो वो सब मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा और आपके परिवार के लोग आपको उठाकर नदी में फेंक देंगे और भूल जाएंगे। नारद मुनि ने बड़े प्रेम से उनको उपदेश किया। हाँ, उनके उपदेश से उनके हृदय के अंदर भक्ति का दीपक जला और तुरंत वो विरक्त होकर, राजा बने रहे वो लेकिन फिर भी हृदय से विरक्त होकर उन्होंने भगवान का पूजा आरंभ किया। और कुछ देर बाद चैतन्य महाप्रभु ने रात को उनको दर्शन दिया और भगवान कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको मेरा दर्शन प्राप्त हो रहा है। उस दर्शन से उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। गौरांग महाप्रभु और उनके साथी गदाधर पंडित दोनों साथ में मिलकर आलिंगन करते हुए नाचते हुए दर्शन दिया। जब स्वप्न टूटा तो राजा स्वप्न से जाग उठे और विरह में रोने लगे। तब भगवान ने दिव्य ध्वनि से उनके साथ संभाषण किया। हे राजा, जब मैं कलयुग में इसी रूप में जिसका मैंने आपको दर्शन दिया स्वप्न में, जब मैं कलयुग में इसी रूप में आऊंगा तो तुम मेरे साथियों में से एक होंगे और तुम्हारा नाम बुद्धिमंत खान होगा। तो बुद्धिमंत खान सुवर्ण सेन थे जिन्होंने कलयुग में अवतार लिया दोबारा बुद्धिमंत खान के रूप में। और बुद्धिमंत खान ने चैतन्य महाप्रभु का विवाह जब विष्णुप्रिया से हुआ उसका सारा खर्चा उसने दिया। फिर जब चंद्रशेखर भवन में भगवान अपने साथियों को लेकर नाटिकाएं करते थे, उस नाटिकाओं का जो भी खर्चा था, वस्त्रों का और डेकोरेशन का और मेकअप का, वो सब बुद्धिमंत खान ने दिया। और जब भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में कहीं भी यात्रा की, खास करके जगन्नाथपुरी की यात्रा की, उस यात्रा का पूरा प्रवास का जो यात्रा खर्च था, खाने पीने का, यात्रा का, सफ़र का सारा खर्च बुद्धिमंत खान ने दिया। तो ये बुद्धिमंत खान का इतिहास है। और जहाँ पर ये बुद्धिमंत खान का राज्य था वो जगह हरिहर क्षेत्र और नरसिंहपल्ली के बीच में थी। तो एक बार ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा इस जगह को, पूरा जंगल था, एकदम घनघोर जंगल था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह खरीदनी है। सब लोगों ने कहा कि क्यों जगह खरीद रहे आप, तो जंगल है पूरा, इसमें तो खूंखार जानवर है, उसमें पत्थर है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फिर भी उन्होंने जिद किया कि मुझे यही ज़मीन खरीदनी है। तो नेगोशिएशन हुआ, उनका डिस्कशन हुआ, तो वो बेचने वाले ने भी कहा कि महाराज जी आप यहाँ पर जमीन को ले रहे हैं, ये तो बड़ा घनघोर जंगल है, यहाँ पर क्या होगा। उन्होंने कहा मुझे यही जगह लेना है। उसे जब जगह लिया तो उन्होंने कहा कि घास सब काटना आरंभ करो। तो जब घास काटना आरंभ किया तो वहाँ पर उनको मंदिर मिला भगवान का। फिर ठाकुर जी ने, मतलब भक्ति सरस्वती महाराज ने इस जगह का पूरा कहानी बताया कि मैंने एक जगह क्यों जिद किया लेने के लिए, क्योंकि ये जगह पर सुवर्णसेन राजा का राज्य था, जहां पर नारद मुनि ने उनको उपदेश किया और इसी जगह पर सुवर्ण सेन को गौरांग महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक जगह, इसलिए मैंने उसको लेना चाहा। तो उसका फिर उद्धार करके सुवर्ण सेन का मंदिर जो है सुवर्ण विहार नाम से आज प्रसिद्ध है, जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से उसको देखकर उसको जगह को प्रकाश किया, उसका विकास किया। और कथा इस जगह की ऐसी है यहां पर भगवान की जो सखी है कृष्ण भगवान की, उसका नाम है कमल की सखी, जो राधा रानी की प्रिय सखी है, वो यहां पर ब्राह्मण के रूप में निवास कर रही थी सत्ययुग में। और यहां पर चंपा के फूल उगते थे, तो चंपा के फूल निकाल निकाल कर उसकी मालाएं बनाकर भगवान को अर्पण करके कमल के सखी ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर यहां पर सेवा कर रहे थे। राधा कृष्ण भगवान की उन्होंने सेवा की, तो कृष्ण भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और बताया कि मैं कलयुग में इसी रूप में आने वाला हूं और संकीर्तन करने वाला हूं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि आप मेरे गौरांग महाप्रभु की लीला में द्विज वाणी नाथ के रूप में अवतार लेंगे। मैंने आपको बताया ना कि राधा रानी ने अवतार लिया किस रूप में, हाँ जोर से बोलिए, गदाधर पंडित। राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में अवतार लिए और गदाधर पंडित भी गंगादास पंडित के गुरुकुल में चैतन्य महाप्रभु के साथी विद्यार्थी थे। तो द्विज वाणी नाथ ये गदाधर पंडित के छोटे भाई थे, तो इसके रूप में उन्होंने जन्म लिया। महाभारत में लिखा है कि कोलद्वीप के अंदर 7 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। 7 करोड़ तीर्थ जो है वो यहाँ पर आकर अपना आश्रय ग्रहण कर लेते हैं गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर और एक कथा ऐसी है कि एक समुद्रगढ़ नाम की जगह है, जो जाने के समय नहीं है उसके लिए। तो समुद्रगढ़ जगह जो है वो द्वारका और गंगा सागर, ये 2 स्थान यहाँ प्रकट होते हैं। जो द्वारका है वो यहाँ प्रकट है और जो गंगा का समुद्र से मिलाप होता है, गंगा सागर बहुत बड़ी पवित्र जगह है, वो भी इस जगह पर प्रकट होकर आश्रय ग्रहण किया हुआ है। तो जब ही महाराज युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने दिग्विजय करने का सोचा। एक राजा का होता है ऐसे कि दिग्विजय करने के बाद उसका एक पद प्राप्त होता है, हाँ विश्व में एक स्थान प्राप्त होता है, तो हर एक राजा के लिए जरूरी है। तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की इच्छा के अनुसार दिग्विजय करने का प्लानिंग किया और अपने 4 भाइयों को 4 दिशा में भेज दिया, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो इस दिशा में भीमसेन आए, हाँ, और भीमसेन जब आए तो रूल क्या था, दिग्विजय करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने दूत को भेजेगा राजा के पास और बताएगा कि हम आ रहे हैं, या तो युद्ध करो या तो शरण में आओ और टैक्स पे करो, मतलब हमारे अधिकार में आप अपने आप को स्वीकार करो। तो जब भीमसेन आ रहे हैं, ऐसे चुनौती आई, तो राजा समुद्रगढ़ था वहां पर, समुद्रसेन बड़ा भगवान का भक्त था, कृष्ण भगवान का, और ये भी जानता था कि भीमसेन भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के सखा भी हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी इनसे युद्ध की चुनौती स्वीकारूंगा, आई विल एक्सेप्ट द चुनौती ऑफ फाइट, और ऐसा युद्ध करूंगा कि भीमसेन को भी एकदम जर्जर कर दूंगा युद्ध से। तब भीमसेन की रक्षा करने के लिए भगवान आएंगे तो मुझे उनका दर्शन होगा, ये भावना से उन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं किया और सेना लेकर चले और घनघोर युद्ध हुआ। और समुद्रसेन राजा ने इतना भयंकर युद्ध किया कि भीम की मृत्यु ही होने वाले थी, इतना भीम को उन्होंने परेशान कर दिया। तो भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आज तक मेरे सामने युद्ध में ऐसा कोई युद्ध नहीं खेल सका जो मुझे भी युद्ध में परास्त करने जैसे हो। तो भीमसेन मारो मृत्यु के समक्ष खड़े हुए। उस समय भीमसेन ने असहाय होकर कृष्ण भगवान को पुकारा कि मेरे सहायता के लिए आ जाओ। तो कृष्ण भगवान अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और जब वो प्रकट हुए तब भीमसेन को नजर नहीं आए, किसी को नजर नहीं आए, केवल राजा समुद्रसेन को नजर आए। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया समुद्रसेन ने, तुरंत भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए वो, और भीमसेन अचंभित रह गए, आज भी तो इतना वीरता से युद्ध कर रहे थे, अचानक दंडवत प्रणाम किसको कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया उसको। बहुत देर तक ये लीला चलती रही, राजा रो रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चरणों में अपने आप को डाल रहे हैं भगवान के, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद में भगवान ने पूरे वृंदावन के 7 दर्शन दिया उनको, उनकी आंखों के सामने इस द्वीप में पूरा वृंदावन प्रकट हो गया, और खास करके कुमुद वन में जो भगवान ने गाय चारण करने की लीला की है, गौचारण की, वो लीला भगवान ने यहाँ प्रकट की। उसके बाद में भगवान ने कृष्ण का रूप छोड़कर गौरांग महाप्रभु का रूप भी उसके सामने प्रकट किया। ये द्वापर युग की बात है। और प्रेम में चूर होकर, मश भाव विभोर होकर संकीर्तन करते हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में भी कृष्ण भगवान ने उस युद्ध भूमि के बीच में दर्शन दिया। और फिर अचानक समुद्र सेन आए और भीमसेन को शरण गए, बोले मैं आपका दास बनने को तैयार हूँ। और तुरंत उनको टैक्स भी पेमेंट किया, और भीमसेन को आखिर तक समझ में नहीं आया कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। तो ऐसी समुद्र सेन की भक्ति थी। ऐसे कहा गया है कि जो क्षीर सागर है, आप जानते हैं क्षीर सागर कहाँ पर है? एनीबडी नोस? जब भगवान का निर्माण करते हैं भगवान, तो सबसे पहले नारायण जी जो है वो महाविष्णु में रूपांतर होता है उनका। और महाविष्णु जो है वो जितने अनंत ब्रह्मांड है सबका निर्माण करते हैं। उनके शरीर के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ऐसे अनंत रोम है शरीर में, कितने रोम होंगे? शास्त्र में लिखा है 3.5 करोड़ रोम शरीर में होते हैं, 3.5 करोड़। तो हर एक रोम में से अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और अगर आप उसमें से एक ब्रह्मांड को विचार करेंगे तो हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु जो है वो गर्भ उदक शायु विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। इसका मतलब महाविष्णु एक है लेकिन अनंत गर्भोदक शायु विष्णु है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में वो महाविष्णु गर्भ उदक शायु विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और सीन क्या है? एक ब्रह्मांड है अंडे की तरह, उसमें आधा जल है, उसको क्या कहते हैं? गर्भ उदक सागर। उसमें जो आपको पता है ना वो दृश्य है, शेषशायी नाग का छत्र है, शेषशायी शेष भगवान का शाही मतलब बिछाना है, शयन करने का जगह है, विष्णु जी चतुर्भुज विष्णु वहाँ विराजमान है, उनके चरणों में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और वो उनके चरण दबा रही है, उनकी नाभि से कमल निकलता है और वो कमल में ब्रह्मा लोक है, और जो देठ है वो जो दांडी है उसकी नाभि से लेकर ब्रह्मा के कमल तक उसमें सारे लोक हैं, 6 पाताल लोक, 1 पृथ्वी लोक और 6 स्वर्ग लोक, उसके ऊपर 7वां ब्रह्म लोक। ये सीन आपको समझ में आया सबको? हाँ। तो पृथ्वी लोक पर ये जो गर्भोदक शाही विष्णु है ये बन जाते हैं क्षीर उदक शाही विष्णु, और इसमें क्षीर सागर पैदा होता है। वो क्षीर सागर मतलब क्या? दूध का सागर। उसके अंदर भी शेषनाग पर विराजमान विष्णु रहते हैं और उस क्षीर सागर में वो निवास करते हैं। और ये जो क्षीर उदक शाही विष्णु है ये परमात्मा के रूप में हर ब्रह्मादि निर्माण किए जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। समझ में आया? महाविष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु, और फिर वो बने क्षीरोदक शाही विष्णु, और ब्रह्मा जी फिर अलग अलग योनियां निर्माण करते हैं, सर्प योनि, पक्षी योनि, मछली योनि, पेड़ वृक्ष योनि, मनुष्य योनि, देवता योनि, ऐसे 84 लक्ष योनि निर्माण करते हैं। और हर एक योनि में अनंत करोड़ों जीव का निर्माण होता है जो भगवान को छोड़कर जीना चाहते हैं। उसका शरीर का डिज़ाइन जो है वो ब्रह्मा जी बनाते हैं उनके कर्मों के अनुसार, और शरीर को बनने के बाद में उसमें परमात्मा के रूप में ये शिर उदक शाही विष्णु प्रवेश करते हैं और हर जीव को अपना साथ देते हैं, संग देते हैं। इसलिए क्या कहा गया है? सुरुदम सर्वभूतानाम। सब जीव के सबसे बढ़िया मित्र वही हैं, क्योंकि वो जीव अगर कीड़ा भी बन गया मूत्र मल के अंदर भी, फिर भी उस शरीर के अंदर भी परमात्मा के रूप में विष्णु आपका साथ देते हैं। ऐसा साथ और कोई दे नहीं सकता है, इसलिए वो सच्चे सुरुद है हमारे। तो ये जो क्षीर सागर है ये बड़ा विशाल सागर है। ऐसे 7 प्रकार के सागर का वर्णन शास्त्र में आता है। एक है तेल का सागर, एक है शराब का सागर, एक है दूध का सागर, एक है और 7 प्रकार के सागर का, एक सॉल्ट हमारे पृथ्वी पर है, हाँ सॉल्टी ओशन, और हाँ एक मधु का सागर है, और 7 प्रकार के सागर, ये 7 प्रकार के द्वीपों पर भगवान ने निर्माण किए हैं। तो ये क्षीर सागर जो है ये भी व्यक्ति है जो सागर के रूप में भगवान की सेवा करता है। तो ये क्षीर सागर भी कोलद्वीप में आकर आश्रय लिए हुए हैं, हाँ जिसके अंदर क्षीर सागर विष्णु निवास करते हैं। यहाँ पर जाह्नवी नदी के आश्रय ग्रहण करके उन्होंने अपना निवास प्राप्त किया है। जाह्नवी नदी नाम क्यों पड़ा गंगा का? क्योंकि गंगा जी ने जब अपना प्रवाह यहाँ पर बहाया तो जाह्नू मुनि का कमंडल भी बहा दिया उन्होंने, उसका कुटिया भी बहा दिया। तो जाह्नू मुनि बड़े सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। फिर भगीरथ ने जाह्नू मुनि की आराधना की, प्रार्थना की, विनती की, फिर जाह्नू मुनि ने उनको रिलीज कर दिया अपने शरीर से, इसलिए उनकी पुत्री हो गई ना, नाम पड़ा जाह्नवी देवी, गंगा देवी का। तो इस जाह्नवी देवी का क्षीर सागर ने आश्रय लिया और इस धाम में अपने आप को रेजिडेंस का व्यवस्था किया। और एक आखिरी कथा है इस धाम की, हाँ हो गया सब। तो इस प्रकार से जो कोलद्वीप है बड़ा ही दिव्य धाम है, और आगे जाकर हम एक और जगह जाएंगे जिसका नाम है चंपाहाटी, वो भी कोलद्वीप का ही भाग है और ये भी बड़ा दिव्य स्थान है, उसकी कथा हम चंपाहाटी में जाके करेंगे। श्री विष्णु प्रिया देवी की, रामेश्वर गौरांग महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे, सब लोग पुकारो गौरांग, सब लोग नहीं पुकार रहे, कुछ लोग यहां वहां देख रहे हैं, गौरांग गौरांग। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।